الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ملک کے مختلف شہروں سے مسجدوں کے امام صاحبان، خطیب صاحبان وغیرہ تشریف لائیو ہیں اور ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع جاری ہے. آج اس کی پہلی شب ہے. میں تمام ائمہ کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا خیر، عوام ائمہ کرام شاید نہ سمجھتے، اس لیے میں نے امام صاحبان کہا تھا شروع میں. تو امام کی جمع ائمہ، اور غلط العوام یہ ہے آئمہ، آئمہ نہیں ہے ائمہ. تو امامت کی فضیلت و عظمت اس سے بڑھ کر کیا بیان کی جائے کہ وہ منصب ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین نے نبھایا، اور اس کے لیے بہترین افراد کا انتخاب بھی کیا. امامت کو لوگ بہرحال جو بھی آج کل امام صاحب کے تعلق سے سوچتے ہیں، لیکن یہ بہت پیارا منصب ہے کہ امام الانبیاء ہے نا، نبیوں کی امامت مسجد اقصیٰ میں ہوئی تھی شب معراج. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی. مسجد نبوی شریف کے بھی آپ امام، ہر صورت میں ہمارے امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بروز قیامت 3 شخص کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قوم کا امام رہا، اور وہ یعنی قوم کے لوگ اسے راضی تھے. ایک روایت میں ہے کہ امام کو اس قدر اجر ملے گا جس قدر اس کے پیچھے نماز ادا کرنے والے سب مقتدیوں کو ملے گا. ایک بار حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملک شام جانے کی اجازت طلب کی، تو آپ نے انکار فرما دیا. پھر اس شرط پر جانے کی اجازت دی کہ وہاں کے گورنر بن کر جائیں، وہاں کے گورنر بن جائیں. مگر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہوں نے گورنر بننا قبول نہ فرمایا. اور عرض کی میں تو شام اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤں اور انہیں سنت کے مطابق نماز پڑھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار نہ فرما سکے، اور آخر کار انہیں جانے کی اجازت عطا فرمائی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سوریا، شام کو آج کل سوریا کہتے ہیں، شام یعنی سوریا کے، سوریا مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد کے امام تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا اس مسجد میں علم دین سیکھنے کا بہت بڑا حلقہ لگتا تھا. اس میں کم و بیش 1600 افراد حاضر ہوتے تھے، 1600 کم و بیش، یہ ان کی شان تھی. یوں مطلب یہ کہ گورنر عہدہ قبول نہ فرمایا کہ میں تو مسجد کا امام بننا چاہتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا انتخاب ہی درست ہوتا تھا. ہم لوگ دو امام صاحب ہیں بھی جو, تو وہ بھی یار اس میں ترقی نہیں ہے, کوئی آدمی مطلب مالی طور پر تنگ ہی رہتا ہے, یوں کر لینا چاہیے تو وہ کر لینا چاہیے. تو یہ ظاہر کے وسوسے کم و بیش سبھی کو آتے ہوں یا بہت سو آتے ہوں گے. تو یہ جھٹک دیں آپ کہ یہ وہ منصب ہے جو ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے. اللہ کی رحمت ہے. اور دعوت اسلامی بھی جو اٹھی ہے, ایک مسجد کے امام ہی اس کو لے کر چلا تھا دیکھا جائے تو. الحمدللہ مسجد بھی کوئی مشہور نہیں, چھوٹی سی مسجد. اب کوئی توسیع ہوئی ہے اس کی, چھوٹی سی مسجد تھی, چند صفیں اس کی تھی الحمدللہ. تو یوں امامت کا منصب جو یہ دین کی خدمت کے حوالے سے بھی نہایت ہی اہم ہے کہ امام سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مانوس ہوتی ہے, احترام کرتی ہے, اس کی بات توجہ سے سنتی ہے. امام کا منصب جو ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے تو بہترین ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے, تم میں سے اچھے لوگ اذان کہیں اور قرا یعنی قاری صاحبان امامت کریں. ارشاد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, اسلام میں نماز بہت اہم عبادت ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے بہت احتیاط درکار. یہاں تک کہ ہمارے علماء کرام نے صراحت فرمائی, یعنی کھل کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نماز چند وجہ سے صحیح ہوتی ہے اور ایک وجہ سے فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے فاسد ہی یعنی ٹوٹا ہوا ہی قرار دیں گے. مزید فرماتے ہیں امام ایسا شخص مقرر کیا جائے جس کی طہارت صحیح ہو. طہارت یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ ہر چیز پاک ہو اس کی, ٹھیک ہے نا, یعنی کوئی بھی قدر مانے, یعنی ایسی نجاست نہ اس جگہ پر جو نماز پڑھے گا, نہ کپڑوں پر ہو, اور بدن کی وضو بھی ہو تو غسل بھی فرض اس پر نہ ہو وغیرہ, یہ طہارت کی تفصیلات ہیں. تو طہارت اس کی صحیح ہو, قراءت درست ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, فاسق نہ ہو, اس میں کوئی بات نفرت مقتدیان کی یعنی مقتدیوں کے لیے نفرت کا باعث نہ ہو. مسائل نماز و طہارت سے آگاہ ہو, یہ چند خوبیاں امام میں ہونی چاہیے. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اسلام کی بہترین خدمت اور رزق حلال کے حصول کا ایک عمدہ ذریعہ مسجد کی امامت بھی ہے, مگر خبردار بے پرواہی کے باعث مقتدیوں کی نمازوں کا بوجھ جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے. لہذا طہارت اور نماز وغیرہ کے ضروری مسائل سے آگاہ ہونا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. ذہن نصیب کہ دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی کراچی یا جہاں میسر آئے, دعوت اسلامی کے ماحول میں کئی جگہ یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے, تو وہاں امامت کورس ضرور کر لیجئے. کئی غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی اور کئی بہتریاں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ, اور آپ بہتر طریقے پر امامت کے فرائض انجام دے سکیں گے. الحمدللہ شعبہ امامت کورس کے تحت 3 ماہ 5 ماہ اور 10 ماہ کے کورسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. مزید مدنی پھول یہ کہ امام صاحبان کو چاہیے, بلکہ ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ بہار شریعت کے کم از کم شروع کے جو 4 حصے وہ پڑھ لیں उसको समझ ले। इसमें नमाज के बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, वजू के, तहारत के, गुस्ल के, तरह तरह के मसाइल मतलब इसमें आ जाते हैं। और चार हिस्से नहीं पढ़े और फिर मतलब इमामत भी कर रहा है तो वो शायद बासूतों में बहुत बड़े जोखम से दो चार हो जाता होगा। बारीक बारीक मसाइल हैं इसमें जो बंदे को पता नहीं चलते, समझ नहीं आती। और बाज़ औक़ात पढ़ने से भी इतना सब बात समझ में नहीं आती जब तक किसी और से ना सीख ले। तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी में तो दरिफ्त अहले सुन्नत भी है, मुफ्तियाने किराम भी है, तो दीगर उलमा अहले सुन्नत जो इसका ज़ौक़ रखते हो तो उनसे भी मज़ीद मालूमात करके रहनुमाई हासिल कर लेनी चाहिए। नमाज में जो सूरतें और अज़कार पढ़ते हैं, सूरतें तो समझ में, अज़कार, अज़कार यानी समझो कि सुभान रब्बी अज़ीम, सुभान रब्बी अला, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, ये सब अज़कार में सब आ गया। तो ये जो पढ़ते हैं क़िराअत के अलावा ये सब भी दुरुस्त होने ज़रूरी हैं। इनमें भी अगर गड़बड़ हुई तो काम ख़राब हो जाएगा। सारी नमाज दुरुस्त थी, सपोज़ करो सारी नमाज दुरुस्त पढ़ी है, भी ज़ीनतुल कुर्रा, खाली कारी भी नहीं है, है ना, बहुत बड़े कारी साहब हैं। और अगर इन्होंने अल्लाह अकबर जोश में आके फरमा दिया नमाज में, अब फरमा दिया लफ्ज फरमा वापस ले लेता हूँ, भाई फरमाना नहीं है, बकना है ना, तो माना टूट गए, ख़त्म हो गए, फासिद हो गए, जिसको माना बदल गए और नमाज टूट गई। ये बाज़ूकात वो इस तरह के लहने जली हो जाते हैं कि जो मतलब ख़तरनाक होते हैं, और बेतवज्जोही में भी बाज़ूकात हो जाते हैं। बेतवज्जोही में भी अगर ये हुआ तो नमाज तो टूटेगी नहीं। इसलिए ये सीखना, इसको समझना कि वैसे तनहाई में अगर नमाज पढ़ता है ना बंदा तो सही पढ़ रहा होता है, लेकिन बाद वो सबके सामने पढ़ने लगता है तो कुछ वो बनाने सजाने में भी कुछ ज़्यादा वो आगे पीछे हो जाता है, तो सजावट के बजाय कुछ और कुछ हो जाता है और नमाज का मसला खड़ा हो जाता है, या कोई शख्सियत आ गई, या कोई सियासी शख्सियत पीछे खड़ी हो गई, या इत्तेफाक से वज़ीर साहब निकल आए, इनको बोले तक मेरे तहरीमा भी कहना ना आती हो, लेकिन कारी साहब जोश में आ गए, अकबार करके शुरू किया तो सबका बेड़ा पार हो गया, आर पार हो गया बेड़ा। तो यूं मतलब सोच समझ कर नमाज पढ़नी भी है तो पढ़ानी भी है। लिहाजा ये कि इमाम साहब को भी चाहिए कि जो इमामतें करते हैं, अगर इमामत कोर्स किया है और वाकई यानी इसमें कामयाबी भी हासिल की है, मरहबा, सत्कर और मरहबा, नहीं की और इमामत भले वर्षों से करते हैं, आप घबराएं, किसी अच्छे इमाम सुन्नी कारी साहब हों उनको अपने मखारिज जो हरूफ है ना ये इनसे चेक करवा लें, क्योंकि बहुत तजर्बा मुझे कि बाज बल्कि एक तादाद है जिनके मतलब हरूफ जो है ना वो सही अदा हो नहीं रहे होते, बाज़ औक़ात यानी कि माना फसाद फासिद माना हो जाते, माना फासिद हो जाते हैं, कर रहे होते इमामत लगे होते हैं। तो अब ये कि तो अपनी नमाज भी तो जा रही है ना और दूसरों की भी जा रही है, और इमामत की अगर तनख्वाह ले रहा तो इमामत भी कहाँ हो रही है, ये इमामत तो इमामत का हक तो अदा नहीं हो रहा ना, तो नमाजें बर्बाद कर रहे हैं, इनके इनकी रोजी का आएगी हलाल कहाँ से हलाल होगी। तो बहरहाल ये कि अल्लाह पाक से डरते हुए अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी नमाजें दुरुस्त करनी है, शर्माना नहीं है, पूछ लेना है, मालूमात कर लेनी है, किताबों से ढूंढ लेना है। अगर ये चार हिस्से वो हर चीज के शुरुआत के पढ़ लेंगे तो अल्लाह करेगा मंजिल काफ़ी आसान हो जाएगी। कोर्स ज़रूरी है, क्योंकि अगर खाली किताबों से डिग्रियाँ मिल जाती तो किताबें तो सब होती हैं, सिलेबस की सारी किताबें होती हैं, बाजार में मिल जाती हैं, लेकिन इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतने दारुल उलूम, इतने सुन्नियों के मतलब हमारे जामियातुल मदीना और ये सारे ना होते ना, कि भाई किताबें दुकान पर रख दी हैं, किताब ले लो सर पे रख लो या घोल के पी लो तो अंदर चली जाएंगी और आप माहिर आलिम दीन बन जाएंगे, ऐसा है, उस्ताद की हाजत तो रहती है। वो तो बहुत पुराना मुहावरा है कि गधे पर नफ्सियात की किताबें लाद दी जाएं तो माहिर नफ्सियात नहीं बन जाता, हो सकता आपने सुना, हमने तो बचपन से शायद सुनाई है। जो किताबें अपनी जगह पर हैं, मैं किताबें समझने के लिए जो इसके मतलब माहिर हैं उनकी रहनुमाई से बेनियाजी नहीं हो सकती। अगर माशी परेशानी ना हो तो बगैर तनख्वाह के इमामत इंशाअल्लाहुल करीम आपके लिए दोनों जहान में बाई से सआदत है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इमाम मुअज्जिन को उन सब के बराबर सवाब है जिन्होंने इनके साथ नमाज पढ़ी है, सवाब बहुत है। लेकिन जो तनख्वाह लेता है इसके बारे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अगरचे जवाज के ही कायल है, मुतअख्खिरीन ने जवाज का फतवा दिया, मुतकद्दमीन जो पहले के उलमा थे वो तो इमामत की तनख्वाह को जायज नहीं कहते थे कि इबादत पर तनख्वाह जायज नहीं है, तो इमामत भी इबादत। लेकिन बाद में इसकी जरूरत पेश आई, अब मस्जिदें तो खाली हो जाएंगी, लोग मुआश की तलाश में पड़ेंगे। पहले लोग खुद ब खुद इमामों की उलमा की इस तरह की खिदमत करते थे, तो यूं ही गाड़ी चलती थी। अब इन्होंने खिदमत की तरफ से थोड़ा हाथ खींचा, अब इमाम साहब हवा खाए क्या खाए, बच्चों को क्या खिलाए, तो अब वो मुआश की तरफ जाएगा तो मस्जिद कौन संभालेगा, मस्जिदें खाली हो जाएंगी। तो यूं फिर जरूरत के तहत इमामत की उजरत को जायज करार दिया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमामत की उजरत जिसने ली अगरचे जायज है लेकिन उनको सवाब नहीं मिलेगा इमामत का, क्योंकि वो अपनी इमामत बेच चुका ये है। तो इसलिए मतलब जिससे बन पड़े कोई ऐसी मतलब सूरत है या खानदान ऐसा है कि जिसने मतलब ये कि भाई दूसरे भाई कमा रहे हैं और ये खिदमत कर रहे हैं, तरकीब मदीना मदीना है, मोहताजी वाली भी नहीं है, तान तंज दिल दुखाने वाला अंदाज भी भाइयों का नहीं है, तरकीब बनी हुई है, तो फिर ये कह जिससे बन पड़े जिसके लिए मुमकिन हो, या कोई ऐसा और कस्बे हलाल की सूरत है उसके पास, तो इमामत फिर फी सबीलिल्लाह करे, फिर उसकी तो बात ही कुछ और होगी, करने वाले करते भी होंगे। बिना सख्त मजबूरी तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा मुनासिब नहीं, यानी तनख्वाह पर इजारे पर है और तो फिर भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी थोड़ा मतलब बाज इमाम साहिबान कुछ ज्यादा ही, फिर कमेटी भी होती है, मतलब हर एक कमेटी ऐसी तो नहीं होती ना मुत्तकियों और परहेजगार, फिर बात बाहर आती है, फिर हमारे इमाम साहब हिर्स करते हैं तो लालची बोलते हैं, जब देखो बोलते तनख्वाह बढ़ा दो यार, इनको इनका पेट ही नहीं भरता यार, यूं करते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, हम दो टाइम की रोटी इनको देते हैं फिर भी बोलते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, तो इनको स्कूटर भी दिला के दिए हमने, मकान भी दिया है फिर भी बोलते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, परेशान करते रहते यार ये मौलाना लोग यूं, ये फिर सारे मतलब मौलानाओं को इस तरह आवाम जो है ना ये लपेट में लेती है, हालांकि सारे मौलाना इससे नहीं होते, और तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया भी तो गुनाहगार नहीं है, नाजायज काम नहीं कर रहा, लेकिन ये कि तनफीर आवाम से बचना चाहिए, लोग मतलब यानी कि लोगों के दिलों में किस तरह दाखिल होना है, इनके दिल में हमसे मोहब्बत हो, हमसे मोहब्बत होगी तो मजहबी लोगों से मोहब्बत होगी, मजहबी लोगों से मोहब्बत होगी दीन से मोहब्बत होगी, इस्लाम से मोहब्बत बढ़ेगी, तो हम लोगों को मतलब हम लोग जो ना ये इस्लाम के हवाले से पहचाने जाते हैं कि भाई ये दीनदार तबका मजहबी तबका, हम लोग सफ़ेद चादर की तरह कि हमारे सफ़ेद चादर पर दूर से दाग नज़र आ जाता है, आप इमाम साहब अगर चौक पर खड़े होकर हा 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 करके हंसेंगे तो लोग नोट करेंगे आप मौलाना होकर, ये दो दो टुकड़े चौकों पे गालियां देंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनको कोई कुछ नहीं बोलता, इनकी कोई मिसाल नहीं देती, और अगर आप इनकी मिसाल देते हैं तो बोलेंगे आप में उनमें फर्क भी तो है ना, सही बात है आप में इनमें फर्क है, आपको अपना वकार रखना चाहिए, आप जो चौक पर खड़े होकर जोर जोर से कह के नहीं लगाने चाहिए, बाजारी अंदाज में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, अड़े अबे तबे होए वाली बात नहीं करनी चाहिए, लड़ा लड़ी और हड़ाउड़ी नहीं करनी चाहिए, और लोग जो हमें बोलेंगे तो सही बोलते हैं, हमारा अपना मनसब है, हमें इसको मतलब दाग नहीं लगने देना, ताकि दीन का काम होता रहे और दीनदारों पर कोई आँच ना आए, वरना अवाम फिर एक लकड़ी से सबको आँकते हैं सारे मौलाना से, हालांकि ऐसा नहीं है, एक मौलाना को करेगा भूल तो सारे मौलाना से نعوذ باللہ من ذالک. یہ ان کی بہت بڑی مطلب ظاہر ہے کہ جرات ہوتی ہے. تو ہماری بعض بے احتیاطیوں کی وجہ سے یہ بےچارے بڑے بڑے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں عوام جو ہے. تو یوں ان کو بچانے کے لیے بھی احتیاط کرنی ہے. تو تنخواہ جتنی دیتے ہیں اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. پورا اللہ کرتا ہے, ورنہ یہ پیٹ جو ہے نا اپنے نفس جو ہے نا یہ بھرتا ہی نہیں ہے. حل مم مزید بورڈ اس کا ہٹتا ہی نہیں ہے. اور دو اور دو, لاؤ لاؤ لاؤ, یہ پڑی رہتی ہے. اللہ پاک صبر و قناعت نصیب فرمائے. اچھا, مزید زیادہ مشاہرے یعنی زیادہ تنخواہ سیلری کے لالچ میں دوسری مسجد میں چلے جانا. ایک امام مسجد کو کسی طرح زیب نہیں دیتا, بالکل نہیں جانا چاہیے. بھلے آپ کو 10 گنا تنخواہ مل رہی ہے ادھر, اور آپ کو سمجھائیں گے بھی یار آپ حافظ ہیں, بہترین قاری ہیں, آپ کا خطاب او ہو ہو, آپ کی آواز کی بلندی دیوار پھاڑ دیتی ہے. اتنی سے تنخواہ میں پڑے ہوئے یار, وہ جامع مسجد میں اتنے نمازی, وہ یہ آپ پھسل گئے تو پھر جس نے پھسلایا نا وہ بھی آپ سے پھسل جائے گا کہ مولانا ہے لال چیا میرے چکر میں آ گیا. میں جن دنوں امام تھا تو مجھ پر بھی کوششیں ہوئی تھی, مسجد بڑی تنخواہ زیادہ, الحمدللہ میں نے ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اتنا سستا نہیں ہے, اتنا سستا نہیں ہوں کہ چند سکوں میں بک جاؤں. الحمدللہ مسجد دور نہیں تھی, جو مسجد قریب تھی بس وہ سب جو قریب وہ بھی قریب ہی تھی مسجد. تو خیر اللہ کی رحمت ہے, کبھی بھی پھسلنا نہیں, پیسے دیکھ کر نہیں پھسلنا. پیسے کیا ہے یار, سب سے پہلا دینار جب وجود میں آیا نا تو شیطان نے اس کو چوما تھا کہ جو تیرا وہ غلام میرا. یہ تصوفی کتابوں میں امام غزالی نے بھی لکھا ہے مختلف کتابوں کے, پہلا دینار جب ہوا شیطان نے چوم کے کہا کہ جو تیرا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا غلام ہے. شیطان کی غلامی نہیں چاہیے, ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جو غلام ہو گئے, 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 خلق کے امام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے. ہو سکے تو پیشگی ایڈوانس تنخواہ نہ لیجیے, بلکہ پہلی تاریخ سے قبل بھی تنخواہ قبول مت کیجیے کہ زندگی کا کیا بھروسہ. یہ ایک وہ تقوی والی بات ہے. اگر تنخواہ وہ جلدی دیتے ہیں 2-3 دن پہلے تو شاید کہیں کہیں اور فو بھی اس کا, لیکن یہ کہ واقعی یہ تو ہے کہ اگر یہ تنخواہ زائد, اب پتہ نہیں عرف ہے یا نہیں ہے, میں جہاں تھا وہاں دیتے تھے, میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ جب پڑھا کہ ان کی بچیوں نے عید کے لیے نئے نئے کپڑوں کا مطالبہ کیا, تو انہوں نے خازن میننگ ٹریزرر خزانچی کو طلب کیا, فرما کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیش کی دے دو ایڈوانس. تو انہوں نے خازن تھے سب نیک لوگ ہوتے تھے, حاضر ہیں حاضر کر دوں گا میں, لیکن حضور آپ یہ گارنٹی رکھتے ہیں کہ آپ مزید 1 ماہ زندہ رہ کر یہ کٹوتی جو یہ آپ انواس دے رہے ہیں یہ تنخواہ پوری آپ کر لیں گے اس کی ڈیوٹی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خوف خدا والے تھے, کانپ اٹھے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے, تو نے مجھے بچا لیا, باقی زندگی ہے کوئی بھروسہ نہیں. 1 مہینہ انہوں نے مطلب وہ پیش کی تنخواہ نہیں اٹھائی بیت المال سے, اور بچیوں سے فرما دیا کہ بچیوں رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے, انہیں پرانے کپڑوں کو دھو لو ان کو پہن لو. یہ واقعہ میرے دل پر لگ گیا, میں 1 دن کی بھی تنخواہ میں مجھے کاہے کو دیتے ہو پیشگی, میں مر گیا تو کیا کروں گا. اس لیے میں یہ ترکیب بنا دی کہ بھلے پہلی تاریخ کو دے دیں तो मेरा अब वो महीना पूरा हो गया, तो यूं मतलब मैंने, अच्छा फिर मैंने कभी भी तनख्वाह बढ़ाने का नहीं कहा। 250 रुपये से मेरा स्टार्ट हुआ था इमामत का। और जब दावत इस्लामी ने उठान लेनी शुरू की तो मसरूफियत बढ़ गई, तो आखिरकार वो मैंने इमामत जब तर्क की, उस वक्त मेरी तनख्वाह माहाना 700 रुपये हो चुकी थी, 700। तो मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ना तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा किया, खुद ही बढ़ाते थे, 250 से बढ़ते बढ़ते 700 तक कर ही दिया ना। 10 साल तक मैं ये नूर मस्जिद इमामत की थी मैंने कागजी बाजार, जहाँ से दावत इस्लामी ने भी उठान ली। अच्छा, और कभी मैंने इन लोगों से कर्जा नहीं मांगा, कमेटी से कि मुझे कर्जा दे दो, मेरे ये मसाइल, मुझे घर चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, फुला सहूलतें चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मतलब ये कि अल्लाह की रहमत से इनके, इन पर मेरे जाने के बाद भी इनके दिलों में मेरी मोहब्बत रही, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर उस मस्जिद में कुछ अरसे के बाद दावत इस्लामी के इज्तिमा की सूरत में हुई तरकीब, मेरा बयान हुआ, मस्जिद भर गई, बाहर लोग जमा हो गए, और फिर रात भर तक मेरे मुक्तदी मुझे अपने अपने घरों पर ले जाते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। रात खत्म हो गई, फजर आ गई, मेरे मुक्तदियों के घर के फेरे मेरे खत्म नहीं हुए। तो जाना तो इस तरह जाना है कि लोग आपको याद करें, ये नहीं कि यार जान छुटी, तंग कर रखा था मौलाना ने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल आप पैसे को नहीं टच करेंगे, मालदारों से तरकीब ही नहीं बनाएंगे, सिर्फ मालदार, सिर्फ मालदारों को भी लिफ्ट नहीं देंगे, सबसे मिलेंगे, फिर मिलेंगे जाके हुजरे में बैठ गए। मैं मिलता था लोगों से, मुझे बुलाते थे, मौलाना बच्चा रोता है तावीज़ बना दो, तो टाइम बेड टाइम जब भी मैं जाके बैठ जाता था, मस्जिद जा रहा हूँ, अरे चलो भाई नमाज का टाइम हो गया, जमात तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि ऐसी तरकीब आप रखेंगे ना तो आप देखेंगे क्या मदीना मदीना होता कैसे है, प्रैक्टिकल हो जाएगा आपको। बहरहाल सवाल करने से बल्कि कर्जा मांगने से भी बचना ही है। आजकल बाज इमाम व खतीब अपने आप को सिर्फ खतीब, और बाज मौजिन साहिबान खुद को नायब इमाम कहना कहलवाना पसंद करने लगे। इमाम अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि मुसल्लातु वसलाम के गुलाम को इमाम, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिन हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के दीवाने को मौजिन, ये नायब इमाम कहलवाने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। यानी नायब इमाम में भी थोड़ा यूं तो होता है, नायब है ना, छोटा हुआ ना, मौजिन कहने में कोई हर्ज नहीं। मौजिन रसूलुल्लाह मशहूर है हजरत बिलाल, इन और इनकी इज्जत कितनी है मौजिन रसूलुल्लाह की, जहाँ ये अजान दिया करते थे मस्जिद नबी शरीफ में, अब वो शामिल है हिस्सा, पहले वो मस्जिद नबी से बाहर था, फिर अजान बाहर दी जाती, अब वो शामिल है। तो उस जगह एक बेहतरीन मतलब चबूतरा या कोई सूरत बनी हुई है इस तरह वो, और आज भी कहते हैं कि जो अजान होती है वहाँ उसी जगह होती है, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जहाँ अजान दिया करते थे, अगरचे अब वो मस्जिद से अजान हो रही है। और सुन्नत तो यही है कि अजान मस्जिद से बाहर दी जाए, हमारे यानी किताबों में तो यही लिखा है। या इन मुमकिन है कि कोई ऐसी नियत की गई हो तामीरात में कि यह हिस्सा मस्जिद से खारिज है, यह भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, तो फिर तो हर्ज नहीं है। जैसे हमने फैजान मदीना जब तामीर किया ना, यही जहां आप तशरीफ फरमाए, तो एक जगह हमने रखी थी ऐसी कि जहां से हम खतीब के सामने वो जगह हो रखी थी कि वहाँ जुमे की अजान दिया करें। अब उसके कुछ हमने वो चौकोर बना भी लिया था, ग्रिल वगैरह, वहाँ जुमे की अजान खुतबे की अजान देते थे, और ये नियत ही खारिज है मस्जिद, क्योंकि खुतबे की अजान जो है ये भी मस्जिद में नहीं दे सकते, फिनाए मस्जिद में दे सकते हैं। तो उसको मैंने, हमने मस्जिद की नियत नहीं की थी, या फिनाए मस्जिद की थी या खारी मस्जिद, अब भूल गया हूँ, लेकिन रखी थी जो पुराने समय में इनको याद होगा। अब हुआ क्या कि वो इस तरह बनी हुई थी जगह कि लोग समझते थे मजार है। अब वो तो फिर हमने उसको किसके को समझाने जाएंगे मजार नहीं है, अब बना हुआ इसी तरह था, लम चौरस तो ये कोई कब्र होगी। तो फिर हमने इसको फिर वो खत्म करके मस्जिद की नियत कर ली। और अब भी जुम्मे की अजान हमारे फिनाए मस्जिद में होती है, बाहर से जिन्होंने जुम्मा पढ़ा उनको पता होगा, और होना भी यही है, सुन्नत भी यही है, मस्जिद के अंदर जुम्मे की अजान नहीं दी जाएगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतह रज़विया शरीफ में काफी दलाल के साथ ये मसला इरशाद फरमाया। अच्छा, आपके मसाजिद में हो, मस्जिदों में भी होती होंगी जुम्मे की अजानें, और मौजिन देते भी होंगे, तो अब आप अगर देखते हैं कि इस तरह ही नहीं मानते, बात वो नहीं मानते लोग, इतने बरसों से आ रहा है, फना हजरत तशरीफ लाए थे तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, तो आप तो अगर आप देखें कि मसले खड़े होते हैं, फिर मस्जिद में फसाद नहीं होना चाहिए, फितना नहीं होना चाहिए, आपकी वजह से एक ग्रुप इधर हो जाए, एक ग्रुप हो जाए, फिर कल पता चला कि इमाम साहब का ग्रुप जो कमजोर पड़ा और इमाम साहब रोड पे आ गए, तो ग्रुप भी नहीं बनाने अपने को, बल्कि कभी ऐसे हालात पैदा हो ना कि नमाजी हमारे खिलाफ हो गए, और मस्जिद रहेगी किसी अपने ही इमाम के पास, लेकिन वो हमें इमाम नहीं रखना चाहते, तो इसमें आफियत है कि शराफत के साथ रिजाइन कर दे, इसमें इज्जत है। मैं अपनी बात, मैंने भी रिजाइन किया, मुझे ऐसे हालात हो गए थे, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ बयान आए दिन, एक एक दिन में बाज होगा दो दो तीन तीन जगह भी बयान करता था मैं, शुरुआत की बात करता हूँ नूर मस्जिद दिन था, तो मुझे ये पता चला था, कहीं से पीछे से पता चला कि ये लोग सोच रहे हैं कि आपको फारिग करें, इस वजह से नहीं कि मुझसे नाराज थे, तो मस्जिद का भी निज़ाम चलाना, बात भी सही थी, मैं ऑफर कर चुका था कि मेरी जो नमाज छुट्टी करता हूँ उसकी तनख्वाह काट लो आप लोग, ये भी नहीं करते थे। खैर, तो बाद में सब मैंने जो भी था पेमेंट किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मैंने यूं मजबूर होकर वो रिज़ाइन कर दिया, हालांकि मौज़िन साहब थे, हाफिज थे, और आवाज़ भी अच्छी थी, पढ़ाते थे नमाज, लेकिन इमाम का अपना एक हिसाब होता है, तो यूं मतलब है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया, फ़ौरन रिज़ाइन मेरा कबूल हो गया, इससे भी तस्दीक हो गई कि इंतज़ार था, तो अल्लाह ने मतलब इज्जत रख ली। अब अगर ये मुझे जवाब दे देते, सिपासनामा पेश करके ही जवाब देते कोई तारीफी, तो बात इतनी ख़राब होती मेरी कि दावत इस्लामी का जो अमीर नहीं वो जो उसको मस्जिद से निकाला है, समझे, तो अल्लाह ना करे दीन के कामों में कैसी रुकावटें खड़ी होती। अल्लाह ने मुझे बचा दिया, जिसने मुझे मशवरा दिया अल्लाह उसका भी भला करे, यार यूं है अपने को पहले से ही अबाउट टर्न होना है, समझ में आ गया, मेरी घर जाकर रिजाइन लिख कर दिया है, मुतवल्ली साहब को बिल्कुल चूं चाँ कुछ नहीं की लेके रख लिया, तस्दीक हो गई। तो ये आपके लिए, ये मेरी जो दरख्वास्त है ये बहुत समझने की है, देखो इमामत अपनी जगह पर है, इज्जत अपनी जगह पर है, भले आप हकबा जानिब हूँ, ये मैं भी हकबा जानिब भी था मैं मतलब, लेकिन बहरहाल अब यूं हकबा जानिब था अभी और नहीं भी था कि मैं छुट्टियां कर रहा था, इमाम को छुट्टियां करनी नहीं चाहिए इतनी, लोग इमाम अब नहीं संभाल सकते, इमामत हर नमाज में नहीं आ सकते आप, तो छुट्टी करें और क्या, यूं बात सही भी थी उनकी तरफ से, अगर ये होता तो जुल्म ना होता कि कोई मेरा जाती मामला नहीं मुझसे, मैंने कहा फिर भी ये मुझसे मोहब्बत, कोई किसी ने मेरे बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये सही आदमी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत इनकी, इनका इज्जत करना ये मेरे मुझे पता है मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे रहा करो कि जमाना मिसाल थे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, लिबास तकवा इख्तियार कीजिए, झूठ गीबत चुगली और वादा खिलाफी वगैरह गुनाहों से परहेज करते रहिए, वरना आखिरत के नुकसान के साथ साथ दुनिया में भी लोग आपसे बज़न होंगे, ये भी मसाइल होते हैं हमारे यहाँ, तकवा परहेजगारी बड़ा दुश्वार अम्र है, एहतियात हो नहीं पाती, और लोगों में भी ऐसी बातें हमारी आ जाती हैं जो मतलब है कि लोगों को हमसे दूर करती है। इमाम जो होता है इधर सबसे अच्छा आदमी होता है, नेक आदमी होता है, क्यों अल्लाह की बारगाह में जो सिफारिश बनाया है ना कि हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में ये पेश करेगा, अब इमाम साहब ये मतलब तू जहाँ मैं आता हूँ देव मार साढ़े चार वाले अंदाज इख्तियार करेगा, तो यार लोगों का भी दिल कैसे लगेगा और ये कैसे मतलब हमारा नुमाइंदा बनेगा अल्लाह पाक की बारगाह में। यूं मतलब इमाम को वैसे भी सबसे ज्यादा परहेजगार मुत्तकी होना चाहिए, अल्लाह का नेक बंदा होना चाहिए। और फिर यह कि गुनाह भरी गुफ्तगू, ये तो मजहबी तबके में भी बदकिस्मती से झूठ गिबत चुगली वादा खिलाफी की कसरत नजर आ रही है, बिल्कुल यानी कि लगाम हट गई है, जैसे इतनी कसरत हो गई है। इल्म कम है, इल्म है तो अमल नहीं है, अमल ना होने की वजह एक ये भी हो सकती है कि माहौल नहीं मिला। किताबें पढ़ ली, चलो इल्म हासिल कर लिया, दरस निजामी कर लिया, फला कोर्स कर लिया, तो खाली इससे बंदा बनता नहीं है। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह कुरा तालेह कुनत। अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अच्छी सोहबतें नायाब नहीं तो कमयाब जरूर है। यूं भी मतलब यह रहे गए मसाइल है, एकदम से इमाम बन गए, इससे पहले कोई सोहबत तो मिली नहीं है इसको। जो बातिनी को तरबियत हो उसकी, जाहिरी तहारत के मसाइल जानता है, बातिनी तहारत का ठिकाना ही नहीं है। अंदर गुनाहों का गंद कचरा भरा हुआ है, हिर्स भरी हुई है, बदगुमानियां भरी हुई है, गिब्बतें तोहमतें तकबुर रिया उजब, पता नहीं क्या क्या अंदर में भरा हुआ होता है। इनकी इनकी मालूमात भी कम होती है, ये भी बता दो। बातिनियात की मालूमात कम, जाहिरी इसलिए मालूमात हो जाती है कि बयान करना होता है, झूठ की मजम्मत करनी है तो झूठ जाहिरी गुनाह है, तकबुर बातिनी गुनाह है। गालियां देना किसी को ये जाहिरी गुनाह है, बदगुमानी करना है बातिनी गुनाह है, दिल से होता है ना, अंदर में बदगुमानी पैदा होती है। हसद बातिनी गुनाह है, अंदर का किसी को पता ही नहीं चलता कि हम हसद कर रहे हैं, तकबर कर रहे हैं, बाजू का नहीं पता चलता, या लोग हमें कहते हैं मगरूरती गलत कह रहे होते हैं, बाजू का करीना वाजे नहीं होता क्योंकि है ही बातिनी गुनाह। रिया, ये रियाकार है, तो कैसे कह दोगे रियाकार, यार पता ही नहीं, तो बातिनी गुनाह है। ये जाने, बंदा जाने, इसका रब जाने, इसने अगर दिखावे के लिए कोई इबादत वाला काम किया है कि ताकि लोगों के दिलों में मकाम बने या पैसे मिले, इबादत के जरिए पैसों का हुसूल, माल का हुसूल, ये भी रिया की तारीफ में, तो ये उसका बातिनी मामला ना, अपने को तो पता नहीं है, तो इसलिए हम रियाकार तो किसी को कह ही नहीं सकते, ना असद खोर कह सकते हैं ये असद खोर है, जब तक को वाजे करीना ना हो या खुद एतराफ ना करे। ये बातिनी अमराज भी कहीं है, इनकी मालूमात कम है, और जाहिरी की वजह मैंने बता दी कि हमको बयान करने होते हैं, या बातिनी की भी इसलिए मालूमात बाजू होती है, उस पर भी बयान करना होता है, वरना अपनी इसलाह के लिए भी कभी स्टडी की मुतालआ किया मुश्किल है। बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये मतलब लीजिए फिर मुंजियात पर भी है, ये मौलिकात है, बातिनी बीमारियों की मालूमात और मुंजियात पर नजात दिलाने वाले अमाल, ये मुंजियात पर है, मुंजियात पर नजात दिलाने वाले अमाल, मौलिकात माने बर्बाद करने वाले हलाक करने वाले अमाल, ज्यादा बोलने खूब कह कहे लगाने और मजाक मस्खरी करने से इज्जत व वकार में कमी आती है। मुक्तदियों से यानी जो अपने पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो मुक्तदी कहलाते हैं, तो मुक्तदियों से ज्यादा बेतकल्लुफ भी मत हों वरना आपस का लिहाज जाता रहेगा, ये अपना वकार भी रखना है। अल्लाह पाक तौफीक, अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक दे, हम सभी को अमल की तौफीक दे, जो कमी कोताही अल्लाह पाक माफ़ कर दे, और हमें दुरुस्त तरीके पर इस अजीम मनसब इमामत को निभाने की सआदत बख्शे, इस्तेकामत भी बख्शे, और दुनियावी हिर्स की वजह से कहीं ऐसा ना कभी इमामत से महरूम हो जाए, इमामत करते करते दुनिया से रुखसत हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
आपने बाहर शरीयत के जो चार हिस्से पढ़ने की तरगीब दिलाई थी कि नमाज के मसाइल, तो मकतबतुल मदीना की जो एक रिसाला है नमाज का तरीका, तो अगर इसको भी अगर आप फरमाएं कि ये अगर पढ़ें तो ये काफी आसान किया गया उसमें मसाइल, नमाज के मसाइल
जी, और अपने नमाज के अहकाम, ये भी तादाद होगी इमाम साहिबान के पास, शायद ये किताब होगी नमाज के हकाम, नमाज का तरीका जो अलग, इसमें भी रिसाला है वो नमाज के हकाम में, तो ये भी होना मुफीद है कि कई मसाइल ऐसे जो बाहर शरीयत میں آپ کو نہیں ملیں گے، وہ ان میں مل جائیں گے، کہ معلومات کر کے، علماء سے مشاورت کر کے، کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ مطلب ہے کہ وہ ضرورتاً ان کی وضاحتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ مسائل ملیں گے جو کارآمد ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.